ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद्भागवतम से पाठ स्कंध सात अध्याय नौ श्लोक संख्या 22। सत्वम हि नित्य विजितात्मगुणः स्वधाम्ना कालो वशीकृत वृषिज्य विसर्ग शक्तिः चक्रे विशिष्ट मजये स्वर षोडशारे निष्पीड्यमानमुपकर्षः विभो प्रपन्न्यम् सत्वं हि नित्य विजितात्मगुणः स्वधाम्ना कालो वशीकृत वृषिज्य विसर्ग शक्तिः चक्रे विशिष्ट मजये स्वर षोडशारे निष्पीड्यमानमुपकर्ष विभो प्रपन्न्यम् सत्वं हि नित्य विजितात्मगुणः स्वधाम्ना कालो वशीकृत विसृज्य विसर्ग शक्तिः चक्रे विशिष्ट मजये स्वर षोडशारे निष्पीड्यमानमुपकर्ष विभो प्रपन्नम्
माताजी
शब्द
शब्दार्थ सह वह परम स्वतंत्र व्यक्ति ने अपनी बहिरंगा शक्ति से भौतिक मन की सृष्टि को जो इस भौतिक जगत के समस्त दुख का कारण है त्वाम तुम हो ही निस्संदेह नित्य शाश्वत रूप से विजित आत्मा जीता गया गुणः जिसका बुद्धि गुण स्वधामना अपनी निजी आध्यात्मिक शक्ति से कालः काल तत्व जो सृजन तथा संहार करता है वशीकृत आपके अधीन विसृज्य जिससे सारे प्रभाव विसर्ग तथा सारे कारण शक्ति ही शक्ति चक्रे काल चक्र में जन्म मृत्यु का चक्र विशिष्टम फेंका जाकर अजया आपकी बहिरंगा शक्ति तमोगुण से ईश्वर हे परम नियंता षोडश अरे सोलह तिलियों वाले पांच भौतिक तथ्य दस इंद्रियां तथा इन सब का नायक मन निष्पीड्यमानम विदलित पहिए के नीचे होकर उपकर्ष कृपया मुझे ले लें अपने चरण कमलों की शरण में विभो हे महांतम प्रपन्नम आपकी शरण में आया। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। अनुवाद हे प्रभु हे परम पुरुष आपके सोलह अवयवों से इस भौतिक जगत की रचना की है किंतु आप उनके भौतिक गुणों से परे हैं। दूसरे शब्दों में ये भौतिक गुण पूर्णतया आपके वश में हैं और आप कभी भी उनके द्वारा जीते नहीं जाते। अतएव काल तत्व आपका प्रतिनिधित्व करता है। हे प्रभु हे परमेश्वर आपको कोई नहीं जीत सकता किंतु जहां तक मेरी बात है मैं तो काल चक्र द्वारा पीसा जा रहा हूं। अतएव मैं आपको पूर्ण आत्मसमर्पण करता हूं। अब आप मुझे अपने पाद पद्मों में संरक्षण प्रदान करें। तात्पर्य भौतिक दुखों का चक्र भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ही सृष्टि है किंतु वे स्वयं भौतिक शक्ति के नियंत्रण में नहीं हैं। वे भौतिक शक्ति के नियंता हैं जबकि हम सारे जीव उनके वश में हैं। जब हम अपनी स्वाभाविक स्थिति त्याग देते हैं जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस भौतिक शक्ति को उत्पन्न करते हैं जिसके वश में सारे बद्ध जीव हैं। वे परम हैं और वे ही बद्धात्मा को भौतिक प्रकृति के संघात से उबार सकते हैं। मामे व्ययी प्रपद्यन्ते मायामेताम तरन्तिते बहिरंगा शक्ति अर्थात माया बद्ध जीवों पर तीन प्रकार के तापों को थोपती है। अतएव पिछले श्लोक में प्रह्लाद महाराज ने भगवान से प्रार्थना की है, आपके अतिरिक्त अन्य कोई मेरी रक्षा नहीं कर सकता। उन्होंने यह भी बताया कि बच्चे के रक्षक उसके माता पिता न तो उसे जन्म मृत्यु के संघात से बचा सकते हैं, न ही औषधि तथा वैद्य उसे मृत्यु से बचा सकते हैं। इसी तरह नाव या अन्य ऐसे साधन भी जल में डूब रहे व्यक्ति को नहीं बचा सकते, क्योंकि प्रत्येक वस्तु के नियामक भगवान हैं। अतएव संतप्त मानवता को चाहिए कि कृष्ण की शरण में जाएं, क्योंकि भगवद गीता के अंतिम उपदेश 18:66 में कृष्ण स्वयं मांग करते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम सारे धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ, मैं सारे पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, तुम डरो मत। सारे समाज को चाहिए कि इस घोषणा का लाभ उठाएं और भूत वर्तमान तथा भविष्य के काल चक्र द्वारा कुचले जाने की भय से कृष्ण द्वारा रक्षित हो जाएं। निष्पीड्यमानम पिशा जाकर शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक जीव वस्तुतः इस भौतिक जगत में पुनः पुनः पीसता रहता है और इस दशा से बचने के लिए उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए, तभी वह सुखी हो सकेगा। प्रपन्नम शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान की शरण में पूर्णतः गए बिना कोई बच नहीं सकता। सरकार अपराधी को कारागार में डालकर दंड देती है, किंतु वही सरकार यदि चाहे तो उसे बंदी जीवन से मुक्त कर सकती है। इसी प्रकार हमें यह अंतिम रूप से जान लेना चाहिए कि हमारी यह दुखमय भौतिक अवस्था पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा नियत की गई है, और यदि हम इस कष्ट से बचना चाहते हैं तो हमें उसी नियंता से निवेदन करना चाहिए। इस तरह मनुष्य इस भौतिक अवस्था से बच सकता है। श्रील प्रभुपाद की जय।
ओम ज्ञान दस्य ज्ञानंजना श्रज्ञा चक्षुर्मिलितेन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्ट स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपक रामय दादि स्वाह। वंदेहम श्री गुरु श्रीयुता पद कमलं श्री गुरु वैष्णवंश श्री रूपं सगजतम सहगना रघुनतन्वितं तं सजीवं सद्वैतं सुवधूतं श्री राधा कृष्णा पदान सहगना ललिता श्री विशाखार्वितं शं हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपी राधा कंदन नमोस्तुते तप्ता कांचना घोरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुति देवी वांछा कल्पा तरभ्य कृपा सिंधु पुरीता पवनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर जो श्री गौर भक्त हरे कृष्ण। Somebody translating for the Russians? So Mataji is sitting over here. Can you call them there? Mataji over here. तो इस श्लोक का उच्चारण प्रहलाद महाराज कर रहे हैं। प्रहलाद महाराज ऐसे आप जानते हो महाजन है, हमारे वैदिक शास्त्र के अनुसार बड़ा महाजन है। स्वयं पूजनाथ समूह कुमार कपिल मनु वह महाजन है और उनमें एक है प्रहलाद महाराज। आध्यात्मिक क्षेत्र में हम चर्चा करते हैं भगवान के भक्तों की, चैतन्य महाप्रभु अध्यक्ष में साधन के साथ करते थे। प्रहलाद महाराज और सुनाई दे रहा है आवाज, अब सुनाई दे रहा है उसको में सुनाई दे रहा है। तो प्रहलाद महाराज बारह में से एक महाजन है और उनके द्वारा हमें महत्वपूर्ण संदेश प्राप्त हो रहा है। इस अध्याय में आप पढ़ते हो कि किस प्रकार प्रहलाद महाराज ने भगवान को आदर दिया और किस प्रकार भगवान का जो क्रोध था उसे कम किया, किसने? प्रहलाद महाराज ने। प्रहलाद महाराज का भाग्य था कि जब वो माता के घर में थे पूरा दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया था, और जब प्रहलाद माँ के घर में थे उस समय ज्ञान का शिकु बहुत गहरी तपस्या कर रहे थे पहाड़ों में, और देवता जो थे वो अत्यंत दुखी थे हिरण्यकश्यपु से। तो देवता प्रहलाद की माँ को घसीट करने जा रहे थे इस उद्देश्य के साथ जब बच्चा पैदा होगा उसको उसका वध हो जाएगा। उसी समय नारद मुनि वहाँ पहुँच गए। नारद मुनि ने कहा, क्या कर रहे हो? तुम देवताओं ने कहा, हम इस औरत के घर में एक महान राक्षस है, हमारी योजना है जैसे वो निकलेगा उसे मार दिया जाए। नारद मुनि ने कहा, तुम कभी उसे मार नहीं सकोगे और उसके घर में सूर्य ऊंची कोटि का भक्त है। तो प्रहलाद महाराज का ज्ञान प्राप्त हुआ था माता के घर में। प्रहलाद महाराज हर मौके का लाभ उठाते थे भगवान की सेवा करने के लिए। हिरण्यकश्यपु को समझ नहीं आ रहा था कौन दे रहा है शिक्षा मेरे पुत्र को, और उन्होंने प्रहलाद के जो जो अध्यापक थे उन्हें डांटा, तुम लोग सावधानी से काम नहीं कर रहे, लगता है कि वैष्णव संत अपना खूब बदल कर आ रहे हैं मेरे बेटे को ये शिक्षा देने के लिए। और फिर नमरका ने क्या कहा, हमें दोष मत दो, हमने खुद समझ लिया था कौन दे रहा है ये दिव्य ज्ञान आपके बेटे को। तो प्रहलाद को अनेक प्रकार के कष्टों को सहना पड़ा और प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यपु ने पूछा, तुम्हारे भगवान कहाँ हैं? ये दिव्य शक्ति है ये कहाँ से आ रही है? पूरे सारे देवता सब ऐसे डरते हैं तो में कोई भय ही नहीं, मैंने पहाड़ों की चोटी से उसमें खिलाया जहर खिलाई जब भी किसी चीज का असर नहीं होता। तो प्रहलाद ने कहा, मेरी शक्ति का कारण वही है जो आपकी शक्ति का कारण भी है। तो प्रहलाद ने कहा, पूछा अब सुनाई दे रहा है तो प्रहलाद महाराज ने कहा जहां से मुझे शक्ति आ रही है वो हर स्थान में है। और रिपू ने क्या सोचा, ये अच्छा मौका है, अब इस खम्भे के अंदर भगवान है तो मुझे इस खम्भे को मारने दो। मुझे उन्होंने वहां से जोर से मारा उस खम्भे को, तो उस खम्भे से क्या निकले, भगवान तो भगवान सिंहदेव बड़े क्रोधित थे क्योंकि हिरण्यकशिपु ने प्रयास किया उनके प्रिय भक्त का वध करने का। तो जब ये श्लोक का उच्चारण हुआ है जबकि हिरण्यकशिपु का हिरण्यकशिपु ने का वध हो गया। तो प्रहलाद महाराज के पिता बहुत क्रोधित थे, सो लक्ष्मी जी ने देखा उनके सामने कोई खड़े होने को तैयार नहीं है। वो इतने क्रोधित क्यों थे कि प्रहलाद ने कशिपु का प्रयास था क्या प्रहलाद को कवच करने के लिए। और प्रहलाद कौन है, भगवान के प्रिय भक्त। तो सारे देवता देवी जो आए भगवान के क्रोध को कम करने के लिए, सब इसकी हिम्मत नहीं थी। लक्ष्मी जी हमेशा भगवान के चरण में रहते, उन्हें भी शक्ति नहीं थी, भगवान नहीं घुसते थे। भगवान फिर ब्रह्मा जी ने क्या किया, उन्होंने कहा प्रहलाद तुम जाओ मेरे पिता के गुस्से को कम करो। तो इस अध्याय में आप वो सुंदर स्तुतियों को पढ़ रहे हो जिसका उच्चारण प्रहलाद ने किया था, वो कब किया था और कब उनके पिता के वध होने के पश्चात। तो आज के श्लोक और तात्पर्य में अनेक महत्वपूर्ण विषयों की चर्चा की जाती है। सबसे पहले वो कह रहे हैं आप हो परम पुरुष, यू आर द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। हमारे शास्त्र में क्या पढ़ते हो, ईश्वर परमा कृष्ण श्री भगवत में क्या निर्णय है, कृष्ण से भगवत कृष्ण यदि सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। तो अज्ञानता में हम क्या सोचते हैं, सब भगवान एक ही है, किसी रास्ते को स्वीकार करो मुंह पहुँचोगे। पर हमारे शास्त्र में क्या बोलते हैं, सब एक नहीं है। और जिस प्रकार पेड़ को जल पिलाते हो तो पूरे वृक्ष में ताकत आ जाती है, उसी प्रकार कृष्ण भक्ति द्वारा आप 33 करोड़ देवता देवियों को प्रसन्न कर सकते हो। तो प्रहलाद महाराज क्या कह रहे हैं, परम भगवान ये पूरी सृष्टि जो है इसका कारण कौन है, भगवान। पूरी सृष्टि के निर्माण का कारण कौन है, भगवान। पर आप जो हो आपके पास कोई भौतिक गुण नहीं है, हमारे पास गुण होते हैं वो हैं भौतिक गुण। वो यहाँ प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, प्रहलाद महाराज यहाँ इस अध्याय में भगवान का गुणगान कर रहे हैं। अगर आप श्रीमद् भगवतम को ध्यान से पढ़ो तो देखोगे पूरे भगवतम में सुंदर स्तुतियों द्वारा इसका गुणगान हो रहा है प्रहलाद महाराज का। जैसे कि भगवान की गोवर्धन पूजा के लिए हमें हम देखते हो कि इंद्र की जब हार हो गई, तो इंद्र जब हार हो गई इंद्र ने स्वीकार किया कि भगवान कौन है, और उन्होंने बड़े सुंदर स्तुतियों के द्वारा परम भगवान का गुणगान किया। भगवान का गुणगान करना भक्त का असली उद्देश्य रहता है। यशोदा माता वो बकायदा शिकायत आ रही थी, तुम्हारा बेटा आकर हमारे घर में मक्खन चुरा देता है। माता कहती है, तो बेटा आपके घर में क्यों गाय? मेरे घर में किसी चीज की कमी है? मेरे घर में 9,000 गायें हैं। तो ईश्वर माता ने कहा ये गलत है, पर अंदर से वो सोच रही थी शायद पड़ोसी गोपियों का दूध दही दूध है, ज्यादा मीठा है। तो वो जब मछली में दही बना रही थी, वो साथ साथ क्या 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 कर रही थी, भगवान की लीलाओं का गुणगान, भगवान की लीला जो थी उसका गुणगान कर रही थी। तो प्रभुपाद जी कहते हैं हम भगवान का नाम हर स्थिति में ले सकते हैं। आप मान लो रसोई कर रहे हो, रसोई करते करते भी भगवान का नाम ले सकते हो। आप कुछ सेवा कर रहे हो, साथ में नाम ले सकते हो। चैतन्य महाप्रभु अपने साथियों के समेत गुंडीचा मंदिर के की सफाई कर रहे थे और कई भक्त जुड़े थे इस योजना में। सारे भक्त कुछ चर्चा नहीं कर रहे थे, वो अपने हाथों से साफ कर रहे थे मंदिर को और वाणी से हरे कृष्ण मंदिर का जाप। तो भगवान के भक्त वो चाहते हैं कि हर स्थिति में क्या किया जाए, भगवान का गुणगान। तो यहाँ प्रहलाद भाई कह रहे हैं आपने पूरी सृष्टि का निर्माण किया है, आप जो हो इन भौतिक तत्वों के पार हो। कम बुद्धि के लोग क्या सोचते, ये जो भगवान का रूप है भौतिक रूप है। और गीता में भगवान क्या कहते हैं, जन्म कर्म चामे मेरा प्रकट होना और प्रकट होना उन्हें क्या है, दिव्य में। जैसे कि अगर साधारण व्यक्तियों का हो भगवान के, भगवान जब प्रकट हुए 4 हाथों के साथ पूरा शरीर उनका सजा हुआ था कैरों के साथ, आपको कहे इम्पॉसिबल माइथोलॉजी, ये सत्य नहीं हो सकता। भगवान के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। तो वो एक कथा थी मूर्छी की और ब्राह्मण की, तो उन्होंने कहा नारद मुनि भगवान के पास जा रहे हो, पूछना हमें कितना जन्म हूँ, कितना समय और बौद्धिक जगह में भटकना पड़ेगा। नारद मुनि ने निकलते समय भगवान से कहा, मुझे आपके 2 भक्त मिले थे जिन्होंने कहा कि आपसे पूछूं उनके इच्छा के प्रश्नों का उत्तर। मोची था उसने भी कहा और ब्राह्मण। तो जो नारद मुनि निकले थे उन्होंने पूछा इनके प्रश्न, भगवान ने कहा मोची को तो कह देना कि जीवन की समाप्ति पर भगवान के धाम चला जाए। वो जो ब्राह्मण है उसे कह रहा उसको कई कई जन्म और प्राप्त करने पड़ेंगे, और अगर वो पूछे मैं क्या कर रहा था जब तुमने प्रश्न पूछे तो क्या देना, वो भगवान बड़े हाथी को सुई के छेक से निकाल रहे थे। तो नारद मुनि आश्चर्य हो गया, भगवान ने क्यों कहा ये। नारद मुनि लौटे और ब्राह्मण से ने पूछा कि अब भगवान को मिले थे, अब पूछा मेरे प्रश्न का उत्तर। उन्होंने कहा तुम्हें कई और मृत्य सहना पड़ेगा, कई और जन्म स्वीकार करना पड़ेगा। और ब्राह्मण ने कहा मुझे कई और जीवन स्वीकार करना पड़ेगा, असंभव है। आप नहीं गए भगवान के पास, क्योंकि उस ब्राह्मण ने कहा आधे के सुई के छेक से कोई अच्छे से सुई के छेक से कोई हाथी को निकाल सकता है नहीं। जब ब्राह्मण के पास गए मोची के पास, जब मोची ने सुना, क्योंकि भगवान हाथी से सुई के छेक से बड़े हाथी को निकाल रहे थे, तो वो जो मोची था वो खुश हो गया। देखो भाई भगवान कितने महान है। तो जो व्यक्ति ये कहते हैं भगवान भौतिक उनका वो भौतिक कार्यों से जुड़े हैं, वो गलत है। भगवान का हर कार्य क्या है? आध्यात्मिक जन्म कर्म क्षम है दिव्य। तो इस श्लोक में कहा जा रहा है हे सर्वपूर्ण भगवान, आप जो हो आपने ये पूरी सृष्टि का निर्माण किया है और वो आपके अधीन है, आप उनके अधीन नहीं हो और आपके अधीन है, और आप कभी भी किसी से जीते नहीं जा सकते। कोई नहीं है जो कि भगवान को क्या हरा सकता है। कृष्ण इज ऑलवेज विक्टोरियस, नो वन कैन डिफीट द लॉर्ड। तो ब्राह्मण कह रहे हैं आपसे कोई जीत नहीं सकता। भगवान किसे कहते हैं? ऐश्वर्य से समाग्रस्य वीर चाहिए से आश्रय ध्यान भगा गया वो सन्न भागा। जिस व्यक्ति में छह प्रकार के गुण हो, क्या ऐश्वर्य से समाग्रस्य, जो सबसे धनी हो, सबसे वीर हो, सबसे खूबसूरत हो, सबसे ज्यादा त्यागी हो और सबसे ज्यादा ज्ञानी, उसी को भगवान बुला सकते हैं। तो नारद मुनि को जैसे कई बार शास्त्र में भगवान कहा जाता है, तो राजमान कह रहे हैं आपने पूरी सृष्टि का निर्माण किया है, आपको कोई हरा नहीं सकता, कि आप कौन हो? आप दिव्यम हो। आगे आगे समय जो है आपका प्रतिनिधि है। भगवान गीता में क्या कहते हैं? टाइम आई एम, तो समय क्या करता है, क्या करता है? हर चीज को नष्ट कर देता है। समय जो है भगवान का प्रतिनिधि है। आप आज आपका शरीर बड़ा खूबसूरत है और ये कल भी खूबसूरत रहेगा। आज आपकी कंठ बहुत मधुर है, कल भी रहेगा। तो समय के साथ हर चीज नष्ट हो जाती है। आपने बड़ा मकान बनाया है खूबसूरत, पर समय के साथ पुराना हो जाएगा। तो समय जो है क्या है? भगवान का प्रतिनिधि। और आगे क्या कर? वो मैं इतना मूर्ख हूं कि समय की आवश्यकता को नहीं समझा। भगवान के जो भक्त हैं उनमें विनम्रता का भाव होता है और वो सोचते हैं मेरे में कोई गुण नहीं है और बाकी जो गुण है दूसरों में है। जैसे कि कृष्णदास कविराज, उन्होंने हमें किसके किस गंध का ज्ञान दिया? चेतन चेतन से। वो कहते हैं मेरा नाम ही मत लो, मेरा नाम लोगे तो तुम्हारे सारे गुण माफ हो जाओगे। तो भक्त का ये भाव रहता है कि मैं जो हूँ सबसे निकम्मा हूँ। यहाँ पर राजमार्ग कह रहे हैं समय जो है आपका प्रतिनिधि है और मैं जो हूँ इस समय के रूप से दबा जा रहा हूँ और कहते हैं आप जो हो भक्तों की क्या करते हो सुरक्षा राके कृष्ण माने के जो भी जिसको भगवान बचाना चाहे कोई बचा सकता है नहीं, तो जैसे बचाना चाहे नहीं बचा सकते। और मैं जो हूँ आपकी शरणगत होता हूँ। भक्त जो है भगवान के शरणगत होता है। भक्त जो है जानता है कि अगर हमें सुख चाहिए तो एक ही उपाय है, वो क्या है? परम भगवान के शरणगत होना। तो तात्पर्य में प्रभा जी अनेक महत्वपूर्ण विषयों की चर्चा करते हैं। सबसे भगवान कह रहे हैं, प्रभा कह रहे हैं, जो भौतिक सृष्टि है इसकी निर्माण किसने किया है? परम भगवान ने किया है। और जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो जानता है कि परम भगवान के शरणागत होंगे तो ही असली सुरक्षा मिलेंगे। तो परम भगवान के शरणागत होने का क्या अर्थ, क्या अर्थ? क्या भगवान की शिक्षा का पालन करना। जैसे कि इस युग में भगवत प्राप्ति के लिए क्या उपदेश मिलता है? करे तो सीधे राजन ऐसे मांगना, कृष्ण देव कृष्ण से पूर्ण मुझे देव। तो कलयुग में अनेक दोष हैं, एक गणेश कलयुग में क्या कृष्ण करा। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं आप जो हो आप ही किसी भक्त की सुरक्षा कर सकते। अगर हम सोचें कि ये डॉक्टर हमारी सुरक्षा हमें बचा लेगा, ये सरकार हमारे यहाँ सहयोग देगा, ये गलत है। इस भौतिक समाज में यहाँ कहा जा रहा है कष्ट 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 है भौतिक समाज में। तो यहाँ बार बार कह रहे हैं कि जब तक हम आपकी शरण नहीं लें हम कभी भी संतुष्ट प्राप्त नहीं करेंगे। भगवत गीता में भगवान कहते हैं ब्रह्मा भूत प्रसन्न आत्मा सोचित ही। जो व्यक्ति आध्यात्मिक क्षेत्र में भगवान के शरणागत होते हैं हमेशा प्रसन्न रहते हैं। तो बौद्धिक संसार में क्या है? दुखार हम चाहे आप कितने भी प्रयास कर लो आप अपने आप को कष्टों से बचा सकते हो। जैसे कि पिछले 2 साल से आप सब को कोविड उदाहरण मिल रहा है। ये जब शुरू हुआ था 2-2.5 साल पहले और सबने सोचा वैक्सीनेशन आएगा तो सब प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी। तो वैक्सीनेशन भी आए पर लोगों के कष्ट दूर हो गए। एक समस्या हल होती है आगे समस्या आरंभ हो जाती है। ये है बौद्धिक जीवन। तो दुखा रहे हम अशाश्वत बौद्धिक संसार में क्या है? कष्ट कष्ट है। और इससे बचने के लिए क्या है उपाय? परम भगवान के शरणागत होना। तो श्रीमद् भागवतम में इस श्लोक में प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अब वो कह रहे हैं जब तक आप भगवान की शरण नहीं लोगे आप अपने आप को कष्टों से मुक्त नहीं कर सकते। इसलिए वो अठारहवें अध्याय का कौन सा वो प्रसिद्ध श्लोक है, सर्वधर्म परमा में सातवें प्रभु जी कहते, जब तक तुम परम भगवान की शरण नहीं लोगे आपको असली सुरक्षा नहीं मिलेगी। तो हमें इस श्लोक के तात्पर्य के द्वारा ये ज्ञान मिल रहा है कि भौतिक संसार में क्लेश ही क्लेश है। और आज के वातावरण में आप क्या देख रहे हो, ये क्लेश है घटते जा रहा है या बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो इसे या तात्पर्य में प्रभु जी कहते हैं हमें क्या करना चाहिए, भगवान की शरणागत होना चाहिए। हमें ये स्वीकार करना चाहिए चाहे हम कितने भी प्रयास कर लें आप कष्टों को दूर नहीं कर सकते। और प्रहलाद महाराज क्या कह रहे हैं, निरति विद्युम स्वतगतिम ही विष्णु। लोग ये नहीं जानते कि अति सुख कैसे प्राप्त होगा और अति सुख प्राप्त होगा कैसे, भगवान की शरणागत होगा। तो प्रहलाद महाराज इन श्लोकों के द्वारा परम भगवान का गुणगान कर रहे हैं। और अगर हम भगवान का गुणगान करना चाहते हैं हमें क्या करना चाहिए, इस श्लोक इन श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना चाहिए। तो प्रहलाद महाराज ने प्रहलाद महाराज ने क्या सुंदर श्लोकों द्वारा परम भगवान को संतुष्ट किया। तो प्रहलाद महाराज है प्रहलाद के मन में कोई भय नहीं था, क्यों, क्योंकि वो भगवान के प्रिय भक्त है। तो इस अध्याय में आप पढ़ रहे हो प्रहलाद महाराज किस प्रकार भगवान की प्रशंसा कर रहे, उनका गुणगान कर रहे हैं। तो भगवान ने प्रहलाद महाराज से पूछा, प्रहलाद मेरे कारण तुम्हें इतना कष्ट सहना पड़ा, मांगो में से क्या वर्ष है। तो प्रहलाद ने कहा, अगर आप मुझे कोई वर देना चाहते हो तो ऐसा वर दीजिए कि मेरे हृदय से सारा भौतिक आकर्षण जो है वो दूर हो जाए। ये प्रहलाद ने कहा, अगर मुझे वर देना चाहते हो तो ऐसा वर दीजिए कि हमारे हृदय में किसी प्रकार का भौतिक आकर्षण नहीं हो। तो आप मेरे कितनों की इच्छा है कि आपके हृदय में किसी प्रकार की मैल नहीं हो। तो प्रहलाद महाराज परम भगवान का गुणगान कर रहे हैं और प्रभुपाद जी अंतिम तात्पर्य के अंत में क्या कह रहे हैं, अगर आप कष्टों से मुक्त होना चाहते हो क्या करना चाहिए, भगवान की शरण लेना। भगवान की शरण लेने का क्या अर्थ है, उनकी शिक्षा का पालन। उनकी शिक्षा क्या है, चैतन्य महाप्रभु ने सरल भाषा में पांच महत्वपूर्ण विषयों की चर्चा की। सबसे पहले क्या था, साधु संग, भक्तों की संगत में रहो। दूसरा था हरि नाम, शास्त्र में लिखा है क्या, हरि नाम एव केवलम खलु वदस्यैव। तीसरा क्या था, भगवतम का अध्ययन, भगवान की आचार्य वगैरह की धाम से। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा इन पांच का पालन करोगे इसके द्वारा आप क्या करोगे, आप भगवान के शरणागत हो सकोगे। तो जैसे आप जानते हो इस संस्था में हमेशा प्रचार की महिमा का आप ज्ञान प्राप्त करते हो। और ये कहा जाता है कि इन ग्रंथों में क्या है, भगवान की वाणी। हमारे आचार्यों ने इस विषय पर बोल दिया, चैतन्य महाप्रभु ने तो कहा था जाए लगता कहो बोले जाए। तो भक्त जो हैं प्रयास करते हैं प्रभुपाद के ग्रंथों को बांटने के लिए। प्रभु जी ने अनेक समय कहा यू वॉन्ट प्लीज मी रिसीवर माय बुक, इन ग्रंथों को बांटो। तो कई बार लोग पूछते हैं क्या कारण है इन ग्रंथों को बांटने पर इतना बल दिया जा रहा है, क्योंकि इन ग्रंथों में है दिव्य ज्ञान। प्रभु जी ने कहा अगर आप इस श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक भी पढ़ लो उसको अपने जीवन में उदाहरण जीवन उसके उसके उस श्लोक के अर्थ के पालन करो अब क्या भगवान के धाम लौट लगोगे। तो भक्ति सिद्धांत जी ने प्रभुपाद जी से क्या कहा अगर भगवान तुम्हें सुविधा दे तो क्या करो ग्रंथ को प्रकाशित करो और वितरण करो। और आप जानते हो जब प्रभुपाद जी ने प्रयास किया ग्रंथ को प्रकाशित करने के लिए उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जब विदेश होकर प्रभुपाद जी ने इन ग्रंथों का प्रकाशित किया तो इन ग्रंथों में क्या है दिव्य ज्ञान है। तो आप जैसे जानते हो सारे विश्व में गीता जयंती के उपलक्ष्य हमारे भक्त क्या करते हैं इन ग्रंथों में है क्या भगवान का ज्ञान, इन ग्रंथों में है दिव्य ज्ञान। शुरू से अंत तक केवल आपको कृष्ण की शिक्षा प्राप्त होती है। तो प्रभुपाद जी ने बड़ी कठिनाई से इन ग्रंथों को प्रकाशित किया और जब प्रथम स्कंद प्रकाशित हो गया था तीन भागों में तो प्रभुपाद ने सोचा अब मेरे पास हथियार है पश्चिम देश में प्रचार करने के लिए। प्रभुपाद जी अमेरिका पहुंचे फर्स्ट कैंटो जिसे उन्होंने तीन भागों में प्रकाशित किया था। और प्रभुपाद जी जब पश्चिम देश में पहुंचे तो उन्होंने अपने भक्तों को कहा डिस्ट्रीब्यूट दीज बुक्स, इन भक्तों का कोई अभ्यास ही ना इस क्षेत्र में, आगे अमेरिका में वैदिक धर्म के विषय में इतना गहरा ज्ञान नहीं था। पर भक्तों ने कहा प्रभुपाद जी हमारे गुरु रोज कहते हैं किताबों को बांटो, पर कैसे बांटे कौन लेगा इन किताबों को, ये तो उनका विचार। पर साथ में ये सोचते रहते थे कि हमें ट्राई करना है। तो एक दिन एक भक्त केशव दास संकीर्तन करके मंदिर लौट रहे थे, रास्ते में वो रुके उनकी गाड़ी में पेट्रोल डालने के लिए 10 डॉलर का पेट्रोल। तो केशव दास ने सोचा मुझे पैसा देने की बजाय इन्हें कृष्ण बुक जो छप के आई है वो बांटेंगे। उसे उनसे पूछा कैन आई गिव यू पे यू इन दिस बुक, उस व्यक्ति ने देखा ओके। तो जब पहली किताब बिकी ऐसे क्या उस व्यक्ति भक्तों का उत्साह बढ़ गया। वो भक्त प्रयास करते गए प्रयास करते करते ग्रंथों का वितरण बढ़ते गया। तो आज पूरे विश्व में प्रभुपाद जी ग्रंथों का अध्ययन हो रहा है और भक्त इस मैराथन के महीने में बहुत प्रयास कर रहे हैं इन ग्रंथों को बांटने के लिए। तो प्रभुपाद जी ने ग्रंथों के वितरण की सेवा पर इतना बल दिया क्योंकि भगवान का आदेश है। भगवान गीता के 18वें अध्याय में क्या कहते हैं या इदम पामम भूयम, जो व्यक्ति यहाँ पे चार सहयोग देता है मेरा अत्यंत प्रिय व्यक्ति है। तो भारत में भी भक्तों में बड़ा उत्साह है और इस समय सारे विश्व में भक्त प्रयास कर रहे हैं अधिक से अधिक मात्रा में तो हम सबको इस सेवा में जुड़ना चाहिए। आप में से कितने भक्त हो जो ग्रंथों की सेवा में जुड़े हो? सबसे ज्यादा कृपा इस सेवा में मिलेगी। कई बार भक्त पूछते हैं, आपकी संस्था में कोई शॉर्टकट नहीं है भगवान की कृपा प्राप्त करने का? हम क्या कहते हैं, शॉर्टकट है क्या? प्रचार करो। तो ये प्रचार की सेवा भगवान को अत्यंत प्रिय है। चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों को क्या कहा, घर घर जाओ और लोगों से ये संदेश लो, क्या बोलो कृष्णा, बोलो कृष्णा, कृष्णा का नाम लो, पाजो कृष्णा, कृष्ण की उपासना करो और करो कृष्ण शिक्षा। उनकी शिक्षा, उनकी शिक्षा कहाँ है? भगवद गीता जैसे ग्रंथ में, उसका पालन करो। तो जिस प्रकार भगवान नित्यानंद हरिदास घर घर जा रहे थे इस संदेश का, उसी प्रकार इसको संस्था के भक्त सारे विश्व में जा रहे हैं। कई साल में वो जाते हैं, लोग उनका स्वागत करते हैं, कहते हैं आ गए हमें उपदेश देने के लिए, बताओ क्या है उपदेश। और फिर हम कहते हैं क्या उपदेश है, कहते हैं जरूर करेंगे। पर कई हैं जब हम जाते हो दरवाजा भी नहीं खोलते। जब चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद हरिदास ठाकुर जा रहे थे घर घर, सब ने उनको आदर नहीं दिया। कई ने आदर दिया और कहा क्या है आपका उपदेश, उपदेश सुनते ही कहा यस वी विल डू इट। पर कई ने ये कहा तुम उन्हें आई, वो तो पागल हो गया है, तुम्हें भी पागल बना रहा है। और कई औरों ने कहा कि हम जब आए थे शिवा संगर में आपका दर्शन लेने, आपने हमें अंदर आने नहीं दिया, तो हम भी तुम्हें आने नहीं देंगे। तो जब आप प्रचार करते हो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि हर व्यक्ति आपके पहुंचने पर तो कितनी किताबें सब मुझे दे, आपको संघर्ष करना पड़ता है। इस कलयुग में स्थिति ऐसे है कि सरकार जैसे दिल्ली में शराब लेकर बहुत की बहुत चिंता होने लोग लेकर पिए, क्यों तुम्हें टैक्स ऊंचा है उस सरकार की ना होती। तो जब एक साल पहले लॉकडाउन हुआ था और इन लोगों को जब पैसा मिला कि सबसे पहले उन्होंने क्या किया, शराब की बोतल पी। और कई साल में झगड़ा हो गया था क्योंकि इतनी भीड़ होती थी कि झगड़ा हो गया। तो सरकार ने क्या कहा, ओ बेचारों को लाइन में खड़ा हो जाएगा, पता है उनके घर में डिलीवरी कर देंगे शराब की। तो उन्होंने होम डिलीवरी कर दिया शराब की। तो हम सोचते हैं कई बार अगर जैसे हम जाए लोग लड़े हमें गिरा जाए फिर तो हमारा गुस्सा बढ़ेगा। पर हम कई घंटों के लिए जाते हैं और कोई साथ नहीं देता। तो परम भगवान को संतोष करने के लिए हमें से हम में जाते हैं। और मान लो आपने 6-7 घंटे प्रचार किया है, ज़्यादा किताबों को नहीं पढ़ा, भगवान आपको प्रेरित देंगे किसके लिए, पूरे 6 घंटे के लिए। तो ये जो सेवा है सबसे महत्वपूर्ण सेवा है और भविष्य के 10,000 सालों तक ये सेवा रहेगी। उसके बाद इतना धर्म होगा पृथ्वी पर कि धार्मिक शिक्षा में किसकी रुचि नहीं होगी। तो ये जो ग्रंथों के वितरण की सेवा है इसमें हमें हम सबको जोड़ना चाहिए। प्रभा जी के अनेक पत्र हैं, प्रभा जी ने कहा अगर कोई सोलह मना करे और चार नियमों का पालन करे और भाई ना हो जा तो वो बिना शंका के कहाँ जाएगा, भगवान के नाम जाएगा। तो कई बार हम डरते हैं, जाएंगे कोई देगा नहीं, सोचते हैं हमारे इसमें अभ्यास नहीं। भगवान गीता में कहते हैं जो प्रेम से मेरी सेवा करते हैं उनमें कुछ कमी भी हो तो मैं क्या करता हूँ, दूर कर देता हूँ। तो ये ग्रंथ का मैराथन और इस वक्त हजारों भक्त जुड़े हैं ऐसे में हमारे हिंदुस्तान में कॉन्ग्रीगेशन प्रीचिंग बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है और कॉन्ग्रीगेशन के जो भक्त हैं वो भी सेवा में जुड़ते हैं। तो आप सबसे निवेदन है आप प्रयास करो और प्रयास करोगे गॉड हैव दो भगवान की सेवा करते हैं जो स्वयं प्रयास करते हैं भगवान की सेवा करते। तो सारे विश्व में ये मैराथन हो रहा है। एक महीने पहले भक्तों ने दो तीन महीने के लिए श्रीमद् भागवतम बांटने का मैराथन किया था, आपको पता है। तो उस मैराथन में हिंदुस्तान में भक्तों ने मिलकर कितने सेंट बांटे मालूम, 25,000 सेंट बांटे। तो और सारे विश्व में 50,000। तो किसी ने सोचा था कि एक दिन आएगा भागवतम से इसको बांट सकेंगे, किसी ने सोचा नहीं था। और भक्तों ने प्रयास किया और ये मैराथन बढ़ते जा रहा है। जब भागवत मैराथन शुरू हुआ था पहले साल कोई 100 किताबें बांट रहे थे, भक्तों का उत्साह बढ़ते गया और आज इस मैराथन में 25,000 भागवतम शहर बांटे। प्रभुपाद जी ने एक पत्र में कहा हमारी इच्छा होनी चाहिए कि हर घर में एक भागवतम का सेट हो और एक चैतन्य चतुर्थी का। तो प्रभा एक भागवतम का सेट और एक चैतन्य चतुर्थी, तो ये हो पाएगा कि वो अगर भक्त लोग प्रयास करेंगे। तो मैं आप भक्तों से ये विनती करना चाहता क्या कि आप सब जुड़िए सेवा में, आप सब प्रयास कीजिए ग्रंथों को बांटने में। रोज सबको प्रयास करना चाहिए। आप जानते हो ये साल जो है स्पेशल साल है। क्या है स्पेशल? हाँ, तो आप सब प्रयास कीजिए। आप प्रभा जी के 1 मिनट बर्थडे और अगर हम प्रसन्न करना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? ग्रंथ को बांटना चाहिए। तो वृंदावन में ग्रंथ को बांटा जा रहा है पर जितना कर सकते हैं वो हम नहीं कर रहे क्योंकि भक्तों में कई आलसी हैं। वो कहते हैं ना मक्खन चोर, तो वहाँ के एक नामों में एक है जो इस सेवा में नहीं जुड़ते, वो क्या है सेवा चोर, सेवा करने से। तो आप सबसे निवेदन है कि आप सब जुड़िए। आप मथुरा जा सकते हो, आप प्रयास करोगे तो भगवान आपको बुद्धि देंगे कैसे करने के। पर अगर आप प्रयास करोगे ही नहीं, सोचोगे नहीं हमारे से नहीं होता, हमारे प्रभा जी कहते थे नेवर टेक नो फॉर एन आंसर, कभी ये नहीं बोलो कि हम ये नहीं कर सकते, भगवान की कृपा से हर कार्य आप कर सकते। तो ये निवेदन था कि आप सब प्रयास कीजिए और प्रयास करोगे तो किसका लाभ है, किसका? हाँ भक्तों का। और नहीं करोगे तो आप इस श्लोक में प्राण मार क्या कह रहे, समय जो है भगवान का प्रतिनिधि है और समय तेजी के साथ बीत रहा है। तो आप भगवान अक्षर अखबार में देखोगे, भारत का जो आर्मी का चीफ था उन एक्सीडेंट में मर गए। तो किसने सोचा था ये एक्सीडेंट होगा? किसने सोचा था? पर एक्सीडेंट हो गया। तो कदम पदम पर खतरा है, हमें क्या करना चाहिए? समय का दुरुपयोग करने बिना क्या करना चाहिए? ऐसे हमें जुड़ना चाहिए। तो आप सब मैं समय जुड़िए। आप में से कितने भक्त सभा में हो जो कि वृंदावन मंदिर से संबंधित हो? कितने भक्त हो? सरन ठाकुर और बाकी जो भक्त हैं वो मेरे ख्याल से दूसरे शहरों से। हाँ, तो चाहे आप किसी शहर में हो, विश्व के किसी कोने में हो, आप क्या कर सकते हो? तो लोग बांट सकते हो। तो ये आप भक्तों से निवेदन कि आप समझ में आता में जुड़िए, और जुड़ने से क्या लाभ होगा? भगवान का संदेश फैलेगा अत्यंत। अगर आप भक्तों से पूछो आप कृष्ण भक्ति में कैसे जुड़े, आप देखोगे कि मैक्सिमम भक्त जुड़े हैं कैसे? आप सब मैराथन में जाइए। जो वृंदावन के भक्त हैं वो भी बांटे, और दूसरे शहर से आए सबका प्रयास रहना चाहिए क्या? मैं तो बांटने के लिए। तो आप सब जुड़िए इस मैराथन में। अभी भी चांस है, अभी ये मैराथन चलेगा जनवरी 10 तक। हम प्रयास करेंगे तो आपको भी क्या प्राप्त होगा भगवान की कृपा। तो आप तैयार हो मैराथन में जुड़ने के लिए सब? आपका क्या लगे? मेरा तो अभ्यास नहीं है। अभ्यास नहीं भी हो तो भगवान की कृपा से कर पाओगे। हरे कृष्ण। संग ठाकुर जो बोलना चाहते हो ये बोलो थोड़ा। क्यों कोई प्रश्न है किसका? जल्दी
प्रश्न है। प्रश्न किनका
है? वो क्लास खत्म नहीं हुई लोग यार।
हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम।
हाँ पूछिए।
कृपा सब लोग बैठ जाएंगे। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न ये है कि अभी आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि भक्तों को धाम में वास करना चाहिए।
क्या करना चाहिए?
धाम में वास। तो जैसा कि एक गृहस्थ और एक शहर में बसा हुआ है और पर उसके मन में इच्छा है कि धाम में वास करना है, तो उसे क्या करना चाहिए?
जिधर भी आप हरि नाम लोगे वो स्थान धाम बन जाता है। अगर आप सब छोड़कर वृंदावन में आओगे, वृंदावन में आ गई जमीन की कीमत बहुत बढ़ गई है, तो आप लोग सब आओगे तो और भी बढ़ जाएंगे। और जहाँ भी आप हरि नाम कर रहे हो वो धाम है। तो शंकर ठाकुर आपको ये हमारे संकृति नीरण है वृंदावन में।
मैं परम पूज्य गुरु महाराज का वाणियों का दोहराना चाहता हूँ और आप सबका चरण में मिनती करना चाहता हूँ, पुस्तक वितरण में भाग लीजिएगा जिनका जितना सामर्थ्य है इस हिसाब से। हरे कृष्ण।
और कुछ? हरे कृष्ण।